आप है SBS हिंदी के साथ।
SBS हिंदी पर गौरव वैष्णव के साथ सुनिए शाम 5 बजे तक के मुख्य समाचार। रिजर्व बैंक ने रिकॉर्ड निम्न स्तर पर घटाई मुद्रा दर। भारत के बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान, मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव। और रेसिंग में ट्विलाइट पेमेंट ने इस साल का मेलबर्न कप जीता। और अब समाचार विस्तार से। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक नकद दर को 0.25% से घटाकर 0.1% के ऐतिहासिक निम्न स्तर पर कर दिया है। अनुमान है कि कोरोना वायरस की वजह से आई मंदी के बीच अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के मकसद से RBA ने 0.1% की इस दर को अगले 3 साल तक बनाए रखने का फैसला ये ले सकते हैं। बोर्ड इस बात पर भी सहमत हुआ है कि बाजार की ब्याज दरों और फंडिंग की लागत को कम रखने के लिए दूसरे मानकों में भी समान कटौती की जाएगी। हालांकि RBA के इस कदम पर लेबर पार्टी के ट्रेजरी मामलों के प्रवक्ता जिम चामस ने कहा है कि RBA का ये फैसला सरकार की मंदी से निपटने की कोशिशों के प्रति अविश्वास मत है।
They have come to the same conclusion that many others have, that even though it will look like a recovery on paper over the coming months and years, it will still feel like a recession for too many Australians who are out of work.
अगली खबर ऑस्ट्रिया से है, जहां पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के मुख्य गिरजाघर के पास एक बंदूकधारी की गोलीबारी के बाद कम से कम 3 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। मृत लोगों में से एक घटना का आरोपी भी बताया जा रहा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी कुछ और लोगों की तलाश में हैं। स्थानीय लोगों को घरों पर ही रहने के लिए कहा गया है और सीमाओं पर जाँच की जा रही है। चांसलर सेबेस्टियन कूटर्स ने कहा इसे एक आतंकी हमला उन्होंने बताया है।
Es ist natürlich eine sehr angespannte Sicherheitslage.
It is of course a very tense security situation, especially in the federal capital Vienna. One perpetrator has been eliminated, but apparently several perpetrators are still at large. From what we can see at the moment, they're very well equipped. They have automatic weapons. They're very professionally prepared. It's definitely a terrorist attack.
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि विक्टोरिया में अभी भी कोरोना के कई बिना जांचे गए मामले होने की संभावना है, बावजूद इसके कि राज्य में लगातार पिछले 4 दिनों से कोरोना संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है और न ही कोई मौत दर्ज की गई है। पिछली बार ऐसा फरवरी महीने में हुआ था, जबकि लगातार 4 दिनों तक कोई भी नया मामला सामने नहीं आया था। विक्टोरिया में अब कोरोना वायरस संक्रमण के 38 सक्रिय मामले हैं। ये मार्च 29 तारीख के बाद से सबसे कम मामले हैं। इन परीक्षणों के कमांडर जेरन वीमर कहते हैं कि आंकड़े सकारात्मक हैं, लेकिन अभी विक्टोरिया के कोविड नॉर्मल की स्थिति में आने में कुछ समय लगेगा।
There will be other cases out there in the community. They may be asymptomatic, they may be at a very low level, they may all be connected, they may not be connected. It's our job to be really vigilant, and that's why for all of us Victorians, you know, we can't now get into a mindset that says, oh well, it's probably over.
खबर साउथ ऑस्ट्रेलिया से। साउथ ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर स्टीवन मार्शल ने कहा है कि उनका राज्य विक्टोरिया के साथ सीमा प्रतिबंधों को करीब 2 सप्ताह में कम करेगा। इस परिवर्तन का मतलब होगा कि विक्टोरिया के साथ कड़ा सीमा प्रतिबंध खत्म हो जाएगा और प्रदेश में आने वाले लोगों को 14 दिनों तक होटल के बजाय घर पर ही एकांतवास की अनुमति दी जाएगी। मौजूदा वक्त में ज़रूरी यात्रियों, छुट्टियों के लिए घर लौट रहे छात्रों और स्थायी रूप से स्थानांतरित होने वाले लोगों को ही विक्टोरिया से साउथ ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश की अनुमति है। प्रीमियर मार्शल कहते हैं कि ये परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि विक्टोरिया में आगे भी संक्रमण के मामले कम रहेंगे। हालांकि वो इस बारे में आशावादी दिखते हैं।
I think we've got to be very careful not to give false hope, but at the same time I think we are in a position where Victoria has done very well. They've locked down very hard. And that has meant that they've got those numbers right down. What we need to see now is what the effects are going to be as that mobility increases.
और अब खबरें भारत से। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मंगलवार को प्रदेश के 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चरण में करीब 2.85 करोड़ मतदाता चुनावी मैदान में मौजूद हैं और जो कुल प्रत्याशी हैं इस चुनाव के चरण में वो 1463 हैं. इनके लिए वो अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं और इस चरण में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव, उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव, इनके अलावा बिहार के एनडीए सरकार के 4 मंत्रियों के भाग्य का फैसला भी होगा. इनमें 2 मंत्री बीजेपी और 2 जेडीयू के हैं. पटना में अपना वोट डालने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने मतदाताओं से अपील की कि वो घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें.
पूरे बिहार के अंदर जिन सीटों पर भी चुनाव हो रहा है, लोग घरों से बाहर निकले, दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें और अपने वोट का अवश्य मतदान करें.
वहीं अपनी सभाओं में उमड़ती भीड़ पर उठे सवालों पर बोलते हुए राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि भीड़ की मनोदशा को समझा जा सकता है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज है. तेजस्वी ने दावा किया कि उनकी सरकार बनने जा रही है.
भीड़ का मतलब नहीं होता, लेकिन भीड़ का जो लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज होता है, आप उसको रीड कर सकते हो. जो उत्साह, जो उम्मीदें, जो आशाएं उस भीड़ से हमको जो देखने को मिल रही है, उससे ये प्रमाण होता है कि हमारी सरकार बनना तय है. क्योंकि मौजूदा लोग, जो बिहार के लोग हैं डबल इंजन गवर्नमेंट से, खास तौर पे नीतीश कुमार जी से लोग गुस्से में नहीं बल्कि नफरत करने लगे हैं. लोग उनका नाम सुनना नहीं चाहते.
मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर भी आज उपचुनाव है, जिसके नतीजे 10 नवंबर को आएंगे. ये उपचुनाव तय करेगा कि प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार रहेगी या जाएगी. आपको बता दें कि इनमें से अधिकांश सीट तब खाली हो गई थी जब कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस साल की शुरुआत में कांग्रेस छोड़ दी और 22 विधायकों को साथ लेकर बीजेपी का दामन थामा. बीजेपी को सत्ता में बने रहने के लिए इनमें से कम 8 सीटें जीतने की ज़रूरत है. यदि सभी सीटें कांग्रेस के पास जाती हैं तो कांग्रेस वापसी का प्रयास कर सकती है. उधर कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को हराने के लिए बीजेपी के पक्ष में वोटिंग से परहेज नहीं करने की बात कहने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रमुख मायावती ने अब बयान दिया है कि बीजेपी के साथ कोई गठबंधन करने के बजाय वो राजनीति से संन्यास लेना पसंद करेंगे. आपको बता दें कि मायावती की पार्टी बिहार चुनाव में ओवैसी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है. भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में एक्टिव केस 5,41,000 रह गए हैं. वहीं पिछले 24 घंटे में 38,310 नए COVID-19 के मामले आने से संक्रमितों की संख्या 82,67,623 हो गई है. बीते 24 घंटों में 490 लोगों की जान गई है. उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए अब नए हाईटेक उद्योगों को ही इजाज़त दी जाएगी.
कोई भी अगर नया इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा तो वहाँ पे केवल और केवल हाईटेक इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री अलाउ की जाएगी. कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाएगी. तो केवल हाईटेक इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री नए इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर. और जितने पुराने इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहाँ भी उनको मौका दिया जाएगा. जो जो लोग चाहेंगे वो अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री बंद करके ये नई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी यानी कि सर्विस इंडस्ट्री या हाईटेक इंडस्ट्री लगा सकते हैं.
उन्होंने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाली मौजूदा विनिर्माण इकाइयों को सेवा या हाईटेक उद्योग में परिवर्तन का विकल्प दिया जाएगा. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सेवा उद्योग पर आधारित है. हाईटेक और सेवा उद्योग को औद्योगिक क्षेत्रों में सस्ती दरों पर जगह मुहैया कराई जाएगी. और अब डॉलर का हाल. आज यानी मंगलवार को यह खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपये में कीमत 52.56 और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 70 सेंट्स थी. और अब खबरें खेल के मैदान से. खबर रेसिंग से, जहां ट्विलाइट पेमेंट ने इस साल का मेलबर्न कप जीत लिया है. 8 मिलियन के पुरस्कार की इस दौड़ में इस आयरिश प्रशिक्षित घोड़े ने टाइगर मॉथ और प्रिंस ऑफ आरन को पीछे छोड़कर विजय हासिल की. हालांकि मेलबर्न कप देखने के लिए हर साल यहां पर करीब 1,00,000 लोग पहुंचते थे, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते दर्शकों को इससे दूर रखा गया था. पहली बार जॉकी की भूमिका में जेई मैकनील ने चैनल 10 को बताया कि ये एक भावनात्मक जीत है.
Also, Joseph O'Brien, who's done a fantastic job preparing him. It's very overwhelming.
भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का एक ट्वीट काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि डेनमार्क ओपन उनका आखिरी मौका था, वो संन्यास ले रही हैं. उनका ये ट्वीट काफ़ी वायरल हुआ और फैंस भी हक्के बक्के रह गए. लेकिन उनके द्वारा किए गए ट्वीट में 3 तस्वीरें भी थी, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी जिसे जानकर फैंस ने राहत की सांस ली. उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि आप चौंक गए हैं या कन्फ्यूज़ हैं तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप जब इसे पूरा पढ़ लेंगे तो आपको मेरा विचार समझ में आएगा. दरअसल सिंधु ने अपने ट्वीट के जरिए कोरोना के कारण बने हालातों का जिक्र किया और लिखा कि इस समय कोरोना के कहर से कहानियों को पढ़कर उनका दिल टूट रहा था. ऐसे में उन्होंने अपने ट्वीट में शेयर की गई तस्वीर में आगे लिखा कि आज मैं इस बेचैनी के हालात से संन्यास ले रही हूँ, इस नकारात्मकता, डर और अनिश्चितता से संन्यास ले रही हूँ. और अब डालते हैं नज़र कल्याणी बुधवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर. शुरुआत पर्थ से. पर्थ में कल बादलों की आवाजाही रह सकती है. अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस. एडिलेड में छिटपुट बारिश की संभावना है. अधिकतम तापमान 20 डिग्री, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस. मेलबर्न में बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं. अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस. देश की राजधानी कैनबरा में ज़्यादातर धूप रहने के आसार हैं. अधिकतम तापमान 27 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस. सिडनी में धूप की संभावना है. अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस. ब्रिस्बेन में भी धूप का अनुमान है. अधिकतम तापमान 28 डिग्री, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस. डार्विन में भी ज़्यादातर धूप के रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस. भारत की राजधानी नई दिल्ली में धूप रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 30 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. समाचारों में आज इतना ही.
ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify या फिर जहां आप podcast सुनते हैं वहां हम हैं.